भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही।
ओम शांति। माताओं का संगठन एक सुंदर विशाल स्नेह मिलन जो इंडिया के अलग अलग कोनों से दिशाओं से कितनी दूर दूर से बाबा के घर सब पहुंचे हैं। और जब से प्रोग्राम मिलता है बठी का, तब से लेकर के सबके मन में बाबा के घर आने का एक उमंग और उत्साह होता है। और माताओं की लगन, वह तो दिन गिनती करते हैं कि कब वो हमारी डेट आए और हम सब बाबा के घर में जाकर पहुंचे। बाबा के घर में आना माने ही अनुभव होता है कि बाबा की छत्र छाया में आ गए, बाबा की गोद में आए, बाबा का बना हुआ सुंदर आश्रय स्थान वहां पर पहुंच गए। बाबा के घर में कदम रखते ही कितनी निश्चिंतता हो जाती है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं मन से, क्योंकि हम कहां पर पहुंचे हैं, किस भूमि पर हम पहुंचे हैं, जहां रात दिन एक ही लात एक ही ताक है विश्व सेवा की, और जहां देश विदेश से योगी आत्माएं आकर के इसी स्थान पर तपस्या करती है। तो ऐसा सुंदर ये तपस्वी स्थान है जहां पर आकर के हम सब यहां पर पहुंचे हैं। और यहां आने से ही और उसके पूर्व ही मन में ये होता है कि इतने निश्चिंत होकर बाबा के घर में अपने योग के समय को बढ़ाएं, योग के चार्ट को बढ़ाएं, क्योंकि यहां और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गृहस्थ में रहते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बाबा को याद करना होता है, ज्ञान का मनन चिंतन करना होता है, उस जिम्मेवारियों के साथ सेवाएं करनी होती है, लेकिन यहां पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम फ्री हो जाते हैं। और योग के अनुभवों के लिए और योग के चार्ट को बढ़ाने के लिए निश्चिंत स्थिति की बहुत आवश्यकता है। जब तक मन निश्चिंत नहीं है तब तक मन शांत भी नहीं होता है। जब निश्चिंत होते हैं सारे कारोबार से तब मन को शांत होना ये इजी सहज होता है, और मन शांत न हो निश्चिंत न हो तो योग कैसे बाबा के साथ लगेगा। तो यहां पर इस योग की अनुभूति के लिए, योग के चार्ट को बढ़ाने के लिए एक सुंदर माहौल वातावरण है, और कहते हैं संगठन की भी शक्ति है। अकेला एक व्यक्ति योग लगाने बैठे और पूरा समुदाय में सबकी बुद्धि की तार उस बाबा के साथ जुड़ी हुई हो तो वातावरण कैसा बन जाता है, बिल्कुल शांत, रूहानियत भरा, अलौकिक हो जाता है। और उससे देखते हैं कि बाहर भी कोई पास हो रहा हो तो वो वायुमंडल आत्माओं को उस शांति की ओर, बाबा की ओर आकर्षित करता है। तो इतनी सुंदर संगठन की शक्ति का भी सहयोग मिलता है भट्टी में। साथ साथ इस भट्टी के अंदर हम कितना ज्ञान का श्रवण और कितने अनुभव बाबा के घर में हमें सुनने भी मिलते हैं, जिससे प्रेरणा मिलती है पुरुषार्थ को तीव्र बनाने की। बाबा की मुरलियों से कई युक्तियां मिलती है, दादियों के, वरिष्ठ बहनों के अनुभवों से भी हमारे पुरुषार्थ की तीव्रता बढ़ती है, बच्ची में आते हैं दृढ़ता भी बनती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण हम आत्माओं को बहुत शक्तिशाली बनाता है। सोच होता है लेकिन उसमें शक्ति नहीं होती है, जबकि यहाँ पर भट्टी में आते हैं प्रेरणा मिलती है, हमारे संकल्प में दृढ़ता के साथ साथ एक पावर करने की आ जाती है कि नहीं हम कुछ करके दिखाएंगे, करेंगे, ऐसा पावर एक हमारे सोच में भट्टी से बढ़ जाता है। साथ साथ जो सुनते हैं हम यहाँ पर, जो भी 5-6 दिन हम यहाँ पर हैं, सुना और उसका अभ्यास यहाँ करने का भी मौका है हमें। जैसे कहा कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सुना उसका अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रयोग यहाँ की ही हम दिनचर्या में करें। सुनने के साथ साथ यदि प्रैक्टिस करते हैं, उसमें अंतर नहीं रखते हैं, उसमें गैप नहीं रखते हैं, तो वो शक्ति हमें मदद करती है। सुना और किया, कुछ समय के, कुछ दिनों का भी यदि उसके बीच में अंतर रख दो तो वो करने का फोर्स, वो जोश, वो कम हो जाता है। लेकिन सुना और किया तो वो बल हमें मदद करता है। तो बच्ची माना सुने, और बाबा कहते हैं कि स्वरूप यहाँ ही और अभी ही बनाओ, और इतनी एकाग्रता के साथ बाकी सब तरफ से अपनी बुद्धि को हटाकर यहाँ पर जो सुनते हैं उनको समाने का एक मौका है, अर्थात ज्ञान के रत्नों से अपनी झोली को भरने का एक सुहावना सुंदर चांस हमें यहाँ पर मिलता है कि यहाँ बाबा ज्ञान रत्न हमें लुटाते रहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि बाबा दे रहे हैं, हमारी जितनी लेने की कैपेसिटी हो, जितना हम भर सके उससे अपने आप को संपन्न बनाने की हमें शक्ति बढ़ानी है, अपने आप को भरपूर और संपन्न करना है। और जितनी एकाग्रता से सुनेंगे उतना ज्ञान से संपन्नता का भरपूर हुए, झोली मेरी पूर्ण रूप से भर गई, ऐसी अनुभूति हम यहाँ पर कर पाएंगे। क्योंकि आज की मुरली में भी था कि ज्ञान को धारण करके फिर देना है, समाकर स्वरूप बनकर फिर औरों को देना है, क्योंकि तभी ही उसका प्रभाव और असर, सेवाएं करते हैं हम लेकिन इफेक्टिव हो वो सेवा, जो बाबा कहते हैं ऐसा तीर लगाओ कि वो आत्मा घायल हो जाए, माया के एटमोस्फियर से, वातावरण से बेहोश हो करके ये ईश्वरीय परिवार और उस वातावरण में होश में आ जाए, उसके लिए ज्ञान का बहुत पावरफुल तीर। शब्द तो वही होंगे लेकिन स्वरूप जो हमने यहाँ अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, और जो हमने एक अवस्था अपनी बनाई, भट्टी में आते ही इसलिए हैं, एक लक्ष्य को लेकर कि यहाँ किस स्टेज को, मन की क्या अवस्था मुझे बनानी है, ज्ञान के माध्यम से योग के भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं का मुझे अनुभवी बनना है, क्योंकि अनुभवी के द्वारा सेवा हो तो सुनने वाले भी अनुभवी बनेंगे, अनुभव करा सकेंगे, लेकिन सर्वप्रथम वह अनुभव मुझ आत्मा को हो। इसलिए यहाँ योग के अलग अलग अवस्थाओं के जो बाबा समय प्रति समय वर्णन करते हैं, उस अवस्था का मुझे यहाँ अनुभव करना ही है, और उस अनुभवों को यहाँ मुझे मेंटेन करना है। कई बार बच्ची में आते हैं, हमें क्लासेस भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहने यहाँ योग कराती है तो समझते बहुत अच्छा योग लगा, अनुभव हुए, लेकिन उस अनुभव को जारी रखना, अनुभव को बना के रखना, ये अभ्यास यहाँ हमें करना है। कई बार बहुत अच्छी प्राप्ति हमें हो जाती है, वो स्थिति बनी लेकिन मेंटेन किया उसको। आजकल देखो हर चीज होती है, वो मेंटेनेंस की आवश्यकता हर चीज की होती है। एक घर है अपना, उसको भी साफ सुथरा रख के मेंटेन करना पड़ता है ना, फर्नीचर को मेंटेन करते हैं, फ्रिज को मेंटेन करते हैं, एसी को मेंटेन करते हैं, हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ भी आत्मा की वो अवस्था जो योग के द्वारा बनी, उसको भी मैनेज तो करना होगा ना, उस स्थिति को मुझे सेफ रखना है। जैसे माताएं आप है, बहुत मूल्यवान चीज आपके पास है, तो उसको क्या करते हैं, अधिक से अधिक हम उसको सेफ रखने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी चीज बहुत मूल्यवान है, ये गुम नहीं होनी चाहिए, उसकी चोरी नहीं होनी चाहिए, कोई लूट न ले, उसको सेफ रखें। जैसे उसकी हमें वैल्यू है, बच्ची में आकर हम जो एक अवस्था मन की ऊंची बनाते हैं, ये भी बहुत वैल्यूबल है और उसको भी मुझे सेफ रखना है। कहां संग के रंग में आकर, कहां किसी की बातों में आकर, किसी के कोई बोल के कारण, किसी के किसी भी प्रकार के व्यवहार, स्वभाव और संस्कार के कारण मेरी उस अवस्था को मुझे नहीं छोड़ना है, उससे मुझे नीचे नहीं आना है, मैनेज करना है, मेंटेन करना है उससे। और कई बार कई लोग कमाते बहुत है लेकिन फिर गंवाना भी उतना ही हो जाता है, तो जमा नहीं होता। कमाने की खुशी भी है लेकिन फिर गवा भी दिया, तो बैलेंस में कुछ बचता नहीं है। फिर देखते हैं कि अरे इतना कमाया, बचत कुछ हुई? मास के एंड में देखते हैं कि कुछ मैंने सेव किया, मैंने कुछ बचाया, तो नहीं ये भी खर्च हो गया, ये भी खर्च हो गया, यहाँ खर्च वहाँ खर्च। फिर सोचते हैं कि इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी लेकिन खर्च हो गया और बैलेंस खाते में कुछ भी बचा नहीं। बच्ची माना ही अपने खाते को हमें जमा करना है, सेव करना है। समय हो, ज्ञान हो, गुण है, शक्तियां हैं, श्वास है, संकल्प है, इन सब को मुझे सेफ रखना है और हर खाते को मुझे जमा करना है, क्योंकि हर शक्तियां हमारे जीवन में उपयोगी है और उस शक्ति को हम, उस एनर्जी को हम बचाएंगे नहीं और अनावश्यक उस शक्तियों को हम खर्च कर डालेंगे तो खालीपन महसूस होगा। कहेंगे समय भी दिया और आप सब यहां पर पहुंचे हो, कई बार कई कारण भी आए होंगे कि यहां न पहुंच सके लेकिन उसका निवारण करके भी पहुंच गए हैं कि नहीं जाना ही है भट्टी में, चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी बातें आई होगी सामने, समझ सकते हैं, लेकिन आपकी दृढ़ता और आपकी लगन ने आपको यहां पर पहुंचा ही दिया है। और यहां पर जब पहुंचे ही हैं तो जो भी हमारे खाते थे, खाली खाते वाला कोई नहीं बैठा है, सबके भरे हुए हैं, और उसमें बढ़ोतरी हो और जमा हो, उसी के लिए आए हैं। और इसलिए हर शक्तियों को, हमारे हर संकल्पों को यहां मुझे सफल करना है और यहां के वातावरण की वो मदद है, सहयोग है, क्योंकि इस वातावरण में श्रेष्ठ सोचना आसान है, शुभ सोचना आसान है, ज्ञान युक्त ही विचारों को चलाना वो यहां आसान है। वो हैबिट डालने के लिए आए हैं, हम आदत डालने के लिए आए हैं। और बाबा कहते किसी भी चीज की आदत पड़ जाए तो फिर आगे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जीवन में किसी भी चीज की अच्छी बुरी कोई भी हैबिट आपको पड़ गई ना, आदत पड़ गई, आदत है ना ऑटोमेटिकली कराती है, उसमें न बुद्धि लगानी पड़ती है, न मेहनत करनी पड़ती है, न सोचने में समय लगाना पड़ता है। और इसलिए कई बार कहते हैं मैं क्या करूं, आपको ऐसे लगता है, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया, ऑटोमेटिकली हुआ। हैबिट, आदत, वो नेचुरली कराती है, उसमें मेहनत की और अटेंशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बच्ची में आए हैं ऐसी अच्छी हैबिट अपने आप में डालने के लिए ना, ये दिन मिले हैं इस संगम युग के, इस भट्टी के दिन, ये हमारे लिए अमूल्य दिन है। एक आगे समय आएगा जो उस इन दिनों को हम अपनी लाइफ में याद करेंगे कि कैसे हमारी भट्टी होती थी, किस प्रकार से होती थी, कैसे हमें बाबा के घर से प्राप्ति होती थी। हाँ। तो इसलिए ऐसे अमूल्य समय को हमें अपना सफल करना है, और जितना बाबा के घर से हम ले सके और उन हैबिट को डाल के जा सके, वो पुरुषार्थ हमें करना है। दादी जी हमारे बीच में पहुंची हैं। माताएं एक सेकंड के लिए खड़ी हो जाएंगी, दादी आई है। हाँ, और दादी का हम सब कसल ध्वनि से स्वागत करेंगे, हाथ हिलाएंगे। अभी दादी से हम सब लाभान्वित होंगे।
परम आदरणीय श्रद्धेय दादी जी हमारे बीच में हैं, और आप सब बहुत अच्छी तरह से आदरणीय दादी जी से परिचित होंगे। अभी आपने एक हाथ की ताली बजाकर दादी का स्वागत किया, अभी दोनों हाथ की ताली बजाकर दादी का स्वागत करें। यज्ञ के गौरवपूर्ण इतिहास की आदरणीय दादी जी अद्भुत कड़ी है। कुछ इतिहास पढ़ते हैं, कुछ इतिहास लिखते, आदरणीय दादी जी उनमें हैं जिन्होंने इस यज्ञ के इतिहास को पढ़ा नहीं, खुद अपने कार्यों से लिखा है। जब चर्चा होती है, बड़े गौरव के साथ हम ये कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हमारे हजारों केंद्र हैं, जरा विचार कीजिए उन हजारों केंद्रों में जो दीप जलाकर हमारी निमित्त बहनें बैठी हुई हैं, उनका निर्माण किसने किया? तब जुबान पर एक नाम आता है, आदरणीय दादी ने। दादी जी ब्रह्मा कुमारी शिक्षिकाओं की जो ट्रेनिंग होती है उसकी डायरेक्टर है, और हम तो कहेंगे हमारे युवा प्रभाग की मात्र अध्यक्षा नहीं है, बल्कि वर्तमान में आज भी दादी जी युवा हैं। अनुशासन का दूसरा नाम आदरणीय दादी रतन मोहनी जी हैं। जहां आप राजस्थान के पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, उसके जोन इंचार्ज रहे आज भी हैं, वहाँ ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, जहाँ हमारी आदरणीय दादी जानकी जी, आदरणीय दादी गुलजार जी, वही तीसरा नाम आदरणीय दादी रतन मोहनी जी का है। मुख्य प्रशासिका के साथ साथ सारे यज्ञ को नेतृत्व दे रही हैं। और दादी जी को देश और विदेश की बात तो क्या कहूँ, वो आए दिन के दौरे हैं जो होते रहते हैं यहाँ भी और विदेशों में भी, मगर भारतवर्ष की गीतम यूनिवर्सिटी ने दादी जी को डॉक्टरेट की उपाधि दी। एक बार सर्वे हो रहा था पूरे संपूर्ण विश्व की महिलाओं का, 10 महिलाओं के नाम सर्वोच्च श्रेणी में रखे गए, उसमें आदरणीय दादी रतन मोहनी जी का भी नाम था। जोरदार हाथ करसल ध्वनि से स्वागत कीजिए दादी जी, अब हमें आशीर्वचन देंगे। ओम शांति।
तो आप लोग क्लास करा के बैठे हैं, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप विशेष कौन से उत्सव से आए हो, कौन से उत्सव में आए हो, आज विशेष रूप से आप सबको बुलाया है क्योंकि अभी दादी प्रकाश मणि जी के दिवस मना रहे हैं। समझा, पता है ना? तो ये सारा संगठन आया हुआ है। आप लोगों ने, आप लोगों में से किसने दादी प्रकाश मणि को देखा था? ये तो आगे वाले बहुत, पीछे वाले थोड़े हैं। और जब इतने सब जानने वाले हैं, जो भी नए नए हैं वो भी जान चुके होंगे। अभी भी जिन बहनों ने आपको बताया होगा कि दादी जी ने बाबा के होते ही इस बाबा ने इस कारोबार को चलाने के लिए दादी को निमित्त बनाया, और दादी जी ने जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, जैसे दिन गुजरते जाए, वैसे तो बाबा के होते ही बाबा ने ही उसको निमित्त बनाया, और काफी समय बाबा के साथ रही। बाबा के साथ तो समझो दादी जी शुरू से ही थी। जब से बाबा ने ये शुरू किया तब से दादी साथ में थी, और फिर इसलिए बाबा के जाने के बाद फिर इस कार्य को दादी जी ने संभाला, और अच्छी तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे जैसे सुनते जाते थे, मैं समझती हूँ आज की सभा में भी कई कुछ नए भाई बहने होंगे जिन्होंने दादी जी को नहीं देखा होगा, परंतु जैसे गायन है बाबा ने भी माताओं और कन्याओं को आगे रखा था, तो जो भी कार्य है उसमें माताएं आगे बढ़ती जाए, और उनों के द्वारा ही सबको ये बाप का संदेश मिल जाए। गाया हुआ है ना, जब जब धर्म की अति गिलानी होती है तब तब भगवानो वाच मैं आता हूँ, परंतु भगवान जो हम सबका भाग्य बनाने वाला है, उस परमात्मा पिता को हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों? बोलो क्यों? देखा है, परमात्मा को हम अपना पिता मानते हैं, ठीक है, तो पिता को बच्चे तो देख सकते हैं ना, तो हम कहेंगे हमने परमात्मा को इन आँखों से देखा है, कहेंगे कहेंगे नहीं कहेंगे कहेंगे जो कहते हैं हम कहेंगे वो हाथ उठाए, कैसे देखा है कोई उठ के बताए, अंदर से देखा है ना, इन आँखों से शरीर में तो नहीं देखा ना। तो ये सब बातें ज्ञान की बड़ी समझने युक्त, जैसे मैं आत्मा शरीर के अंदर विराजमान है ना, शरीर पांच तत्वों का बना हुआ, ठीक है, बोलता तभी है जब इसमें आत्मा विराजमान है, परंतु आत्मा को इन आँखों से देखा नहीं जाता है। इन आँखों से जो नाम शरीर पर पड़े है, उस नाम से हम जानते हैं, लेकिन जो वास्तव में आत्मा है, भले कहेंगे नाम भी तब पड़ता है शरीर में, शरीर पर, जब आत्मा विराजमान है। आत्मा निकल जाती है तो नाम वहाँ तक ही रहता है, भले जिनों के संपर्क में है, जो उनके लौकिक माता पिता है, वो याद करते रहेंगे, परंतु नाम को याद करने से कोई उनों को वो नहीं भासना आएगी। शरीर से जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ किया, उस अनुसार याद करते हैं, परंतु बाबा ने अभी हम बच्चों को ये शिक्षा दी है, बल हम शरीर को देखें, परंतु देखते हुए हमें सदा याद रहे इस शरीर को धारण करने वाली आत्मा है। तो स्वयं भी हम अपनी आत्मा स्वरूप में स्थित रहेंगे, और जिसको भी देखेंगे उसको भी आत्मक भाव से देखने से, इस शरीर में रहते अगर हम आत्मक भावनाएं अपन में जागृत करते हैं, तो हमारे स्वभाव संस्कारों में भी परिवर्तन आता है। आता है, है आप लोगों को अनुभव, क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप शांत है। शरीर में आने के बाद ये ऑर्गन्स होने से हर ऑर्गन्स का अपना अपना कार्य उनसे वो कराती रहती है, लेकिन इनसे कार्य कराने की शक्ति आत्मा की है। इसलिए आप सबको भी अनुभव होगा, बाबा ने भी हम बच्चों को यही शिक्षा दी है कि बच्चे सदा अपने को आत्मा निश्चय करके चलो। क्यों? आत्मा समझने से सर्व के प्रति हमारी आत्मक भावना होने के कारण, कि जो भी समझो शरीर के द्वारा बोलना करना होता है, ये तो हम समझते हैं ना, हर आत्मा अपने अपने संस्कारों के अनुसार अनेक जन्मों का चक्कर लगाती 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 अब अपने अंत के जन्म में आके पहुंची है, ऐसे मानते हो? मानते हो? ये नॉलेज तो है ना? है नॉलेज? नहीं है? इसलिए हमें भी यही समझ के चलना है कि शरीर के द्वारा मैं आत्मा बोलती हूँ, जब मैं आत्मा बोलने वाली हूँ तो मुझे आत्मा का निजी स्वभाव कौन सा है? हम कहते हैं हम परमात्मा की संतान है, शरीर तो उनकी संतान नहीं है। आत्मा कहती है मैं परमात्मा की संतान हूँ, लेकिन शरीर परमात्मा ने नहीं दिया है। शरीर हमें अपने कर्मों के अनुसार मिला हुआ है और उन कर्मों के अनुसार आत्मा उन संस्कारों से फिर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए अभी अंत में, अब है कलयुग, कलयुग का अंत, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। ठीक है, आएगा ना सतयुग? तो सतयुग में आएंगी तो हम आत्माएं, परंतु वो आत्माएं जिन्हों के अंदर यह निश्चय पक्का है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर को धारण कर इस सृष्टि मंच पर अपना अपना पाठ बजाने आई हूँ, अब वास्तव में मुझ आत्मा का संस्कार कौन सा? वास्तव में जब हम मानते हैं हम परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा सर्व के प्रति शुभ चिंतक, जो भगवान के महावाक्य है, अंत में अर्थात जब कल्प का अंत होता है, मैं गुप्त रूप से फिर से आकर तुम बच्चों को तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की पहचान देता हूँ। है भगवान वाच, वो तो शास्त्र जो जिस भाषा में लिखते हैं उस भाषा में आती है, लेकिन अर्थ तो यही है। इसलिए वर्तमान हमें बाबा ने शिक्षा दी है, और ये तो अनादि ड्रामा सृष्टि का चक्कर बना हुआ है कि सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग के बाद क्या होगा? जलमयी हो जाएंगी सारी सृष्टि, जलमयी हो जाएंगी। फिर भी ये चक्कर कल्प के बाद रिपीट होता है, इसलिए फिर हम आत्माएं अगर अभी जब भगवान वाचा के अंत में मैं गुप्त रूप में आकर के तुम बच्चों को ये शिक्षा देता हूँ, जो इस शिक्षा को धारण करके उन्हीं गुणों को, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा ही परमात्मा की संतान, तो जो परमात्मा पिता के सर्व के प्रति शुभ भावनाएं है, ऐसी ही हम आत्माओं की भी सर्व के प्रति शुभ भावनाएं सदा बनी रहे। जबकि अभी हमें बाप के द्वारा ये नॉलेज मिल चुकी है कि हर आत्मा अपने अनेक जन्मों के संस्कारों के अनुसार, उन्हों का अपने अपने हर एक का संस्कार है, क्योंकि पाठ बजाने में जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार संस्कार आत्मा के बनते जाते हैं और इस सृष्टि चक्र के अंदर अपना पाठ बजाती आती है। लेकिन साथ साथ ये भी हमें नॉलेज बाबा ने दी है कि सत्युगी दुनिया में कौन सी आत्माएं भाग लेती है, जिन्होंने इस नॉलेज को धारण करके अपनी जीवन में वो क्वालिटीज बनाकर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, ऐसे अपने में दिव्य गुरुओं की धारणा कर ली है, वे ही आत्माएं फिर सत्युग में आती है। इसलिए सत्युग के समय पहले संख्या कम रहती है, धीरे 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 बढ़ती जाती है और द्वापर से लेकर वृद्धि थोड़ी तीव्र गति से होती जाती है। अभी भी हाँ उसी समय पर पहुँचे हैं आकर अपना 84 का चक्कर पूरा करके, इसलिए फिर से हमें बाप के द्वारा वही नॉलेज मिली है। हमें ये महसूस होना चाहिए हम वही कलप पहले वाली आत्माएं जिन्होंने बाप के गुप्त वेश में आए हुए दिए जो शिक्षाएं दी उसको हमें जरूर ग्रहण करके जो नई दुनिया आने वाली है उसमें अपना पार्ट बनाना है। क्योंकि जन्म तो आत्मा ने जन्म ले लिया है, शरीर धारण करते कर्म करते आई है, तो अब हमें अपने ऐसे कर्म और ऐसे शुभ चिंतक बन करके जो अभी हमें फिर गुप्त वेश में बाप ने शिक्षाएं दी है उन शिक्षाओं को धारण कर हमें अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाकर दैवी गुण संपन्न यही बनना है। देवता स्वरूप हमारा यहाँ नहीं प्रत्यक्ष होगा, परंतु अगर अभी हम दिव्य गुरुओं को धारण करके अपने संस्कार ऐसे दिव्य बना देते हैं, बोलना हर एक से व्यवहार में आना हमारी दृष्टि वृत्ति आत्मक भावनाओं की जितनी बनती जाएंगी उस अनुसार ही हम फिर आगे के आने वाली सत्युगी दुनिया में ऐसा जन्म लेकर फिर से हम देवता स्वरूप से इसी सृष्टि पर राज भी करेंगे अथवा अपना अपना पाठ बजाएंगे। लेकिन पाठ का संबंध जैसे इस समय में हमारी विचारों की धारणा और वो कर्म में जैसे जैसे हमारे धारणा युक्त ज्ञान युक्त कर्म होगा उस अनुसार ही हाँ हम सत्युगी दुनिया में अपना पाठ बजा सकते हैं। इसलिए बाबा ने हमें कलयुग के अंत के समय में गुप्त रूप से यह पहचान देकर पिताश्री ब्रह्मा के द्वारा इसी ज्ञान को हमें समझा करके कि जो भी पुरानी कोई आदतें ऐसी है जिससे हम किसको दुख देते या हमारे बोल ऐसे निकलते, उन बातों को हम ये समझ लें कि हम अगर आदि आत्माएं हैं तो हमें अपने स्वभाव संस्कार को ऐसा सरल बनाना है जो न मैं किसको दुख दूं, न मुझे किससे दुख फील हो। कोई कुछ कहता भी है लेकिन जब बाबा ने हमें ये शिक्षा दी है उस शिक्षा के अनुसार हम बाप के शिक्षाओं को अपने जीवन में अच्छी रीत मनन चिंतन करके स्वयं को बाप के शिक्षाओं के अनुकूल ऐसे अपना स्वभाव, ऐसे अपना बोल, ऐसे ही हम इस शरीर के द्वारा कर्म कराते रहें, दिल के अंदर यह याद बनी रहे मैं शुद्ध आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ, तो मुझे याद रहेगा मुझे इस शरीर से कौन सा कर्म कराना है।
अभी आपने दादी से प्राप्त हुए वरदानों से झोली भरी। मैं ब्रह्मा कुमारी बहन ज्योति जी और करुणा जी से निवेदन करूंगी कि वो आए, ये दरबार सज गया है और दादियों को तिलक से सुशोभित करें और गुलदस्ते भेंट करें। इस स्वागत की कड़ी में मधुरवाणी ग्रुप मंच पर आ रहा है, जो भावनाओं के सुमन लेकर आ रहा है, बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करने जा रहा है आपके सामने। तो मधुरवाणी ग्रुप का भी मैं आह्वान करूंगी, कृपया मंच पर आ जाए।
दुनिया ने गिराया है, भगवान ने उठाया है, सबने ही ठुकराया है, प्रभु ने गले लगाया है।
दुनिया ने गिराया है, भगवान ने उठाया है, सबने ही ठुकराया है, प्रभु ने गले लगाया है।
भोले भगवान को भोली माताएं भाग गई, भोले भगवान को भोली माताएं भाग गई, दादी की यादें लेकर माताएं आ गई, मधुबन में भक्ति करने माताएं आ गई। स्वागतम स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम स्वागतम वंदे मातरम। भारत भाग्य विधाता है, नवयुग का निर्माता है, भंडारी भंडारा भी माताओं से भर जाता है।
भारत भाग्य विधाता है, नवयुग की निर्माता है, भंडारी भंडारा भी माताओं से भर जाता है।
बाबा की सेवा साथी पूजाए आ गई, बाबा की सेवा साथी पूजाएं आ गई, दादी की यादें लेकर माताएं आ गई, मधुबन में भक्ति करने माताएं आ गई। स्वागतम स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम स्वागतम वंदे मातरम। लक्षण को समान बनाने वाली, बन के फरिश्ता धरती पे नई दुनिया लाने वाली।
लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली, बन के फरिश्ता धरती पे नई दुनिया लाने वाली।
परिवर्तन मौसम ले मस्त फिजाएं आ गई, परिवर्तन मौसम जाएगी, दादी की यादें लेकर माताएं आ गई, मधुबन में भक्ति करने माताएं आ गई। स्वागत में दशो दिशाएं माताओं की महिमा गाए, शांति वन में ये शीतल हवाएं आ गई, बाबा दादी की प्यारी आशाएं आ गई। स्वागतम स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम स्वागतम वंदे मातरम।
ओम शांति। ऐसी वंदनीय माताओं को कोटि कोटि नमन। हमारे भट्टी में जिन रहनुमाओं ने क्लास करानी है उन्होंने आपको चखा चुखी कराई, उनकी विद्वता उनका आचरण आपके सामने दो तीन दिनों में आएगा। और अब हमारे बीच में परम आदरणीय मुनि दीदी, जिनकी वजह से ये परम सौभाग्य आपको मिला कि दादी जी की इस पुण्य स्मृति के पावन दिवस पर आप सब यहाँ एकत्र हो और साथ साथ भट्टी करके अपनी श्रद्धांजलि भी दादी जी को दे सके। तो आदरणीय मुनि दीदी को हम निवेदन करेंगे कि वो आपको अपने मुखारविंद से दो शब्द सुनाएंगे और बाबा के घर की मीठी मीठी टोली और साथ साथ सौगात से भी परिचित कराएंगे। आदरणीय मुनि दीदी, ओम शांति। आज प्यारी दादी जी के 10वीं पुण्यतिथि पर, स्मृति दिवस पर, आप सभी प्यारी प्यारी माताएं पूरे भारत से, शायद नेपाल भी हो, पधारे हैं। तो आप सभी का मैं प्यारे बाबा की तरफ से, सर्व दादियों की तरफ से, अव्यक्त स्वरूपा दादी जी की तरफ से बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जब मैं प्रोग्राम बनाने बैठी पूरे वर्ष भर का, आप सब जानते होंगे यज्ञ का पूरे वर्ष भर का प्रोग्राम बनाने की जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है, जो कि मैं प्यारी प्रकाशमणि दादी जी के साथ सीखी थी। बनाने बैठी तो सबसे पहले मैं यही सोचती हूँ तो इस बार दादी डे पर किसको बुलाना है, उसके बाद मैं पीछे के प्रोग्राम बनाती हूँ। तो इस बार अगले बार हमने दादी डे पर युगलों को बुलाया था तो इस बार सोचा आप प्यारी प्यारी माताओं को यह सौभाग्य दिया जाए, ये चांस दिया जाए। तो आप सभी अपने दिल की श्रद्धांजलि प्यारी दादी जी को अर्पित कर सके, क्योंकि माताएं बहुत है तो हमने माताओं के दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप बनाया 2 से 15 साल वाली माताएं और एक बनाया 16 साल से ऊपर की माताएं। तो आप सब तो प्यारी दादी जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आप सब ने दादी जी की बहुत पालना ली है, उसके आप सभी अनुभवी हो। तो 25 अगस्त दादी जी का स्मृति दिवस आप सभी उतना ही अव्यक्त होकर के अव्यक्त रूप से मनाएंगे। मेरा आप सबसे विशेष रिक्वेस्ट यही है तो आप 25 अगस्त प्यारी दादी जी के स्मृति दिवस पर आए हैं तो आपके लिए जो ये 4 दिन का समय है ये बहुत 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 वैल्यूबल है। इस समय के महत्व को जान करके इधर उधर तेरी मेरी बातों में समय वेस्ट नहीं करके, लेकिन आज आप यहाँ पर ये व्रत लेंगे तो मुझे संपूर्ण मौन में रहना है, अंतर्मुखता में रहना है और अपने स्वयं की चेकिंग करनी है, मेरे अंदर ऐसा कौन सा संस्कार है जो मुझे विघन रूप है। हमारी सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि यही है तो हम अपने अंदर के संस्कार को जो हमें डिस्टर्ब करता है उसको यहाँ दादी देह पर अव्यक्त स्वरूपा दादी के सामने छोड़ के जाएं और ये व्रत लेवे तो जो बाबा हमें कहते हैं संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। अब समय बहुत नजदीक है, अब लास्ट का भी लास्ट समय चल रहा है। इन घड़ियों को हमको सफल करना है, इन श्वासों को हमको सफल करना है और हमें अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है और दे करके संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बन के वतन चलना है। आप सभी माताएं बहुत अनुभवी हैं, हर बात की अनुभवी हैं। अपना कॉमन जीवन नहीं बिताना है लेकिन अपना अभी विशेष 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 जीवन बिताना है। घर गृहस्थ में रहते हुए न्यारे और प्यारे कमल फूल के समान अपना जीवन बिताना है। बुद्धि की डोर बाबा के साथ बंधी रहे, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना है। बेहद की सेवा हमको करनी है। दादी जी की तीन बातें सदा काल के लिए याद रखनी है। हमारी प्यारी दादी जी हमेशा कहती थी आप कहाँ भी रहो, किस भी सेवा में रहो लेकिन हमेशा अपने को निमित्त समझ करके रहो। कोई अहम कोई अहंकार नहीं हो, मैं निमित्त हूँ, करण करावन हार बाबा है। तो अपने को निमित्त समझ करके रहो तो सदा टेंशन फ्री रहेंगे। और निर्माणता का गुण धारण करना है, छोटा हो या बड़ा हो सबको रिगार्ड देना है, निर्माण चित होकर के चलना है, सबको सम्मान देना है, खुद स्वमान में रहना है और अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखनी है। जोर जोर से बोलना, चिल्ला के बोलना, गुस्सा करना, एक दूसरे के अवगुणों की तरफ दृष्टि जाना, ये सब अब हमें शोभता नहीं है। हम बहुत पुराने बाबा के बच्चे हो गए हैं, अब बाबा जो हमें चाहता है हमसे वो हमें पूरा करना है। हमारी वाणी बहुत निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच कर बोलो। यही हमारा आदर्श है, यही हमारी विशेष मर्यादा है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, दादी जी के स्मृति दिवस पर आप अपने साथ ये 300 सौगात लेकर के जाओ और स्पेशली 4 दिन आप पूरा मौन में रह के अपने अंदर इतनी शक्ति भरो, इतनी शक्ति भरो जो आप भरपूर होकर के जाओ, पूरा साल आपकी बैटरी चार्ज रहे, सदा बाबा आपको याद रहे और सदा बाबा की बातों पर आपका विशेष विशेष ध्यान रहे। ओम शांति।
अभी हमारे बीच में आदरणीय मुनि दीदी ने क्या करना है हमें ये बताया,
सौगात बता,
और अभी सौगात बता रहे हैं कि बाबा के घर से हमें कौन सी यादगार मिलने वाली
है। याद सौगात आपको मिल रही है, ये थैला है जिसके अंदर पेपर डाला है तो इतना बड़ा बन जाएगा दिखाने के लिए। तो ये याद सौगात आप सबको आज बाबा के घर से मिलेगी और साथ में ये बुक मिलेगा दादी जी का जो आप लोगों के लिए बनाया गया है, और उसके साथ में ये टोली मिलेगी बाबा के घर से, और बच्चों के लिए ये बच्चों का थैला खोला नहीं बच्चों का थैला है। आप सबको एक बात बता देते हैं, अभी दादी जी का स्मृति दिवस है तो हम कारोबार में बहुत बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसके लिए आज आपको वेलकम में ही हम गिफ्ट दे रहे हैं ताकि आप निश्चिंत होकर के अपनी भट्टी करो। इसका मतलब ये नहीं है जब जिसका मन चाहे तब चला जाए अपना, नहीं, आपको ये चार दिन स्वउन्नति के लिए मिले हैं, चार दिन की भट्टी जरूर करना, जब जाने का समय हो तभी आप जाना, लेकिन सौगात आज ही आप सबको लेनी है, इसके बाद सौगात नहीं दी जाएगी। और सौगात में टीचर्स बहनों के लिए भी यही सौगात है, माताओं के लिए भी यही सौगात है, भाइयों के लिए भी यही सौगात है, सेवाधारियों के लिए भी यही सौगात है, यूनिवर्सल सौगात है, सबके लिए है, सभी को लाइन में लेनी है टीचर सहित, इसलिए आप सभी ये सौगात आज ही स्वीकार करेंगे। आज आपके लिए रात फ्री रखी गई है, कोई क्लास नहीं है, आप लाइन में आएंगे सौगात लेंगे, आपके लिए चार लाइन है, लेकिन आप भीड़ नहीं लगाएंगे, जैसे जैसे मनोरमा बहन आपको बुलाएंगी उसी प्रकार आप सभी यहाँ पर उठ करके सौगात लेंगे। किसी को भी अलग से सौगात नहीं मिलेगी और किसी को भी अलग दिन सौगात नहीं दी जाएगी, ये आप सबके ध्यान पे रहें।